पाठ 44 अध्याय 32।
पिछले सप्ताह मुख्य रूप से उस बात की तैयारी थी जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। हमने पाठ का समापन उन साधनों के इतिहास पर संक्षेप में चर्चा करके किया जिनके द्वारा आज उपयोग में आने वाली बाइबल का निर्माण हुआ, जिसमें मूसा की आरंभिक पुस्तकों जिसे तोरह कहा जाता है से लेकर यीशु में विश्वासियों द्वारा नया नियम या ब्रिट हदाशाह तक की प्रगति शामिल है। हमारी तैयारी का उद्देश्य यह जांचना था कि पवित्र शास्त्र को प्राथमिकता देने के अर्थ में या यहां तक कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, सबसे बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए। हमने सीखा कि आरंभ में इब्रानी ऋषियों ने सिखाया था कि यह ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है कि परमेश्वर के कौन से नियम और सिद्धांत दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य रूप से ऐसी परिस्थितियां होंगी जीवन के नियमित क्रम के रूप में जब हमें एक को दूसरे पर चुनना होगा, क्योंकि दोनों नियमों या सिद्धांतों का एक साथ पालन नहीं किया जा सकता है। मैंने कुछ अवसरों पर जिस उदाहरण का उपयोग किया है वह द्वितीय विश्व युद्ध की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें कोरी टेन बूम ने यहूदियों को कार्य शिविरों में जाने और नाजियों द्वारा अंततः विनाश के लिए छिपाया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इन लापता यहूदी भगोरों का पता है जिन्हें वे छिपा रही थीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। पवित्रता की शपथ लेकर उन्होंने अपने मानवीय सरकारी अधिकारियों से झूठ बोला। यह पाप है और परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने की अनुमति नहीं देता। फिर भी अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला होता तो वे यहूदी जिन्हें वे बचा रही थीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और समय के साथ मार दिया जाता। उन्होंने निर्दोष मानव जीवन को बचाने का विकल्प चुना और ऐसा करके उन्होंने सही किया। ईश्वर मानव जीवन की रक्षा के सिद्धांत को सदैव सत्यनिष्ठ रहने के सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता है। आधुनिक युग में पश्चिमी चर्च और पूर्वी चर्च का अधिकांश भाग का यह सामान्य तरीका बन गया है कि पुराने नियम के अंत और नए नियम की शुरुआत में शास्त्रों और नियमों को प्राथमिकता देने में पहला कदम उठाया जाए। दूसरे शब्दों में हमें लगभग हर मामले में नए नियम को पुराने नियम से बेहतर बनाना है। लेकिन इससे भी अधिक सामान्य तरीका यह है कि पुराने नियम को नए नियम के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। संक्षेप में हमें नए नियम को पुराने नियम की नींव बनाना है। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि पुराने नियम को अप्रासंगिक और समाप्त घोषित कर दिया जाए। और इसलिए आस्तिक के लिए हमारा बाइबल ही नया नियम है और इससे अधिक कुछ नहीं।
यहां एक उदाहरण दिया गया है जो कैथोलिक विश्वकोश में वर्णित नए नियम के निर्माण और स्थिति के चुनौतीपूर्ण विषय का सामना करता है।
नए नियम के पूर्ण और स्पष्ट सिद्धांत का विचार शुरुआत यानी प्रेरितों के समय से इतिहास में कोई आधार नहीं है। नए नियम का कैनन पुराने नियम की तरह एक विकास का परिणाम है, एक ऐसी प्रक्रिया का जो चर्च के भीतर और बाहर दोनों जगह संदेह करने वालों के साथ विवादों से प्रेरित थी और कुछ अस्पष्टताओं और प्राकृतिक हिचकिचाहट से मंद थी और जो ट्रिडेंटाइन काउंसिल की हठधर्मी परिभाषा तक अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुंची थी। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह पाया कि आरंभिक चर्च, प्रारंभिक का अर्थ है मसीह की मृत्यु के बाद के लगभग 200 वर्ष, निश्चित रूप से नए नियम की हमारी आधुनिक अवधारणा से सहमत नहीं था जो पुराने नियम को प्रतिस्थापित करता है, यहां तक कि इसे अप्रचलित भी बनाता है। वास्तव में सबसे प्रारंभिक ईसाई बाइबल लगभग 2 शताब्दियों तक उपयोग की गई वही थी जिसे हम पुराना नियम तनख कहते हैं, और तथाकथित ईसाई बाइबल में जो री जाने वाली पहली पुस्तकें संत पौलुस के पत्र या 4 सुसमाचारों में से कोई नहीं थी बल्कि अपोक्रिफा की 15 पुस्तकें थीं, जो कई शताब्दियों तक यहूदी धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। उसके बाद ही एक अलग बाइबल खंड के रूप में दिखाई देने वाली एक पुस्तक जिसे हम नया नियम कहते हैं उसे विहित किया गया और पवित्र शास्त्र घोषित किया गया, और तब भी ट्रिडेंटाइन परिषद में 367 ईस्वी तक विशिष्ट पुस्तकों और पत्रों की कोई चर्चव्यापी सहमत सूची नहीं थी, जो गैर यहूदी ईसाई बाइबल बना सकती थी।
इसके अलावा उस समय तक चर्च दो मुख्य शाखाओं, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च में विकसित हो चुका था, जिनके अलग अलग धार्मिक केंद्र, अलग अलग धार्मिक सरकारें और नेता और अलग अलग धार्मिक प्रथाएं और सिद्धांत थे। एक शाखा रोम में स्थित थी, दूसरी बाइजेंटियम आधुनिक इस्तांबुल में, और वे आज भी अलग अलग हैं और अभी भी बहुत कुछ पर सहमत नहीं है। यहां तक कि पूर्वी और पश्चिमी चर्च द्वारा उपयोग की जाने वाली बाइबल भी अलग अलग तरीके से बनाई गई है, पश्चिमी चर्च से कैथोलिक और बहुत बहुत बाद में प्रोटेस्टेंट उपशाखाएं विकसित हुईं। कैथोलिक चर्च आज भी अपोक्रिफा की 7 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के रूप में मान्यता देता है। प्रोटेस्टेंट ने 1500 के दशक में मार्टिन लूथर के आदेश पर अपनी बाइबल से उन पुस्तकों को हटा दिया। पूर्वी चर्च उपशाखा के आधार पर अपोक्रिफा की 7 से लेकर सभी 15 पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के रूप में स्वीकार करता है। यहां तक कि दोनों शाखाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली बाइबल के नए नियम के खंड भी थोड़े अलग हैं, क्योंकि एक इब्रानियों की पुस्तक को स्वीकार करता है और दूसरा नहीं। पिछले सप्ताह हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु यह प्रदर्शित करना था कि मत्ती 5 में मसीह के अपने शब्दों के अलावा किसी भी तरह से तनख इब्रानी बाइबल को समाप्त नहीं किया गया था, और इसीलिए यह स्वयं स्पष्ट है कि नए नियम को पुराने नियम के प्रकाश में लिया जाना चाहिए। जैसा कि व्यवस्था विवरण 30 में तोरा को वाचा के संदूक के बगल में औपचारिक रूप से रखा गया था, जिसमें सबसे कीमती कलाकृति 10 आज्ञाएं थीं। यह दर्शाता है कि तोरा वास्तव में मूसा को दिए गए परमेश्वर के उन 10 वचनों से जुड़ा था, लेकिन उनके अधीन भी था।
इसलिए नए नियम की स्थिति यह है कि इसे तोरह और पुराने नियम के बगल में रखा जाना चाहिए। नया नियम पूरी तरह से तोरह और तनख से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही यह इसकी नींव पर बना है। पुराने नियम की नींव 10 आज्ञाएं हैं और नए नियम की नींव पुराने नियम में है, और मैंने दिखाया कि वास्तव में बाइबल के अधिकार और पदानुक्रम का संबंध और पैटर्न यीशु के व्यक्तित्व में भी प्रदर्शित होता है, क्योंकि उसने लगातार इस बात पर जोर दिया कि उसने सब कुछ पिता की इच्छा से किया, अपने ही नहीं और पिता सर्वोच्च अधिकारी थे, भले ही वह अधिकार भी उन्हें ही दिया गया था। गेतसेमेन के बगीचे में उन नाटकीय क्षणों को कौन भूल सकता है, जब यीशु जानते थे कि कुछ ही घंटों में उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया जाएगा और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब यीशु ने पिता से कहा कि यह प्याला मुझसे ले लो, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
आज हम व्यवस्था विवरण 32 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे पूरा होने पर वाचा के संदूक के बगल में रखा गया था, जो इस बात का प्रतीक था कि यह 10 आज्ञाओं के अधीन था। अध्याय 32 को अंग्रेजी में मूसा का गीत कहा जाता है, इब्रानी में इसे शिरत हाजिनू कहा जाता है, जो मूसा के गीत के पहले 2 शब्द हैं, कान लगाओ। यह गीत वास्तव में एक भजन है, यह भविष्यवाणी भी है, और यह संगीत के साथ एक कविता है। यह यहूदी लोगों और यहूदी धर्म के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसे अलग रखा जाता है और पूजा और उत्सव के समय सुनाया जाता है। पवित्र शास्त्र के एक हिस्से को उसके संदर्भ से बाहर निकालने और इसे धार्मिक अनुष्ठान के एक तरह के स्टैंड अलोन भाग के रूप में उपयोग करने का यह विचार ईसाई धर्म में भी किया जाता है, उदाहरण के लिए प्रभु की प्रार्थना के साथ। आइए मूसा द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखे गए इस लंबे गीत को पढ़ें। अपनी बाइबल में व्यवस्था विवरण अध्याय 32 खोलें।
व्यवस्था विवरण अध्याय 32 पूरा पढ़ें। इस गीत का स्वर दिलचस्प है। इसमें कहीं भी माउंट सिनाई या अब्राहम की वाचाओं का उल्लेख नहीं है। कई बाइबल आलोचकों का कहना है कि मूसा का यह गीत एक शांति संधि की शर्तों के अनुसार बनाया गया है, जो आम तौर पर एक जागीरदार राज्य और उस साम्राज्य के राजा के बीच इस्तेमाल की जाती है जिसने उन्हें जीत लिया है। लेकिन सामान्य संधि व्यवस्था शब्दावली और संदर्भ का अभाव है, और इसलिए किसी भी वाचा का उल्लेख न होने से सुजरेन संधि सिद्धांत में छेद हो जाता है। इसके बजाय मूसा के गीत का स्वर एक पिता और उसके विद्रोही बेटे के बीच के रिश्ते जैसा है। आधार यह है कि यहोवा ने इसराइल को बनाया है और अपनी सभी अन्य रचनाओं की तुलना में उनके साथ बहुत अधिक अनुग्रह किया है। इसराइल उसका प्रिय ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए इसराइल का नैतिक दायित्व है कि वह अपनी वफादारी, जो स्वयं उनकी कृतज्ञता से पैदा हुई है, को दर्शाते हुए आज्ञाकारिता के साथ जवाब दे।
पद एक कहता है कि आकाश और पृथ्वी को मामले के तथ्यों और यहोवा द्वारा इसराइल के विरुद्ध लगाए जाने वाले आरोपों के गवाह बनना है। स्वर्ग शब्द आकाश और उसमें लटकी हुई वस्तुओं को संदर्भित करता है, न कि परमेश्वर के आध्यात्मिक निवास स्थान स्वर्ग को। सृजित चीजों के रूप में आकाश और पृथ्वी को अभियोग सुनने के अलावा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा जाता है। इसराइल पर दंड देने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हम बाद के समय के भविष्य वक्ताओं जैसे यशायाह और यिर्मयाह को पाते हैं, जो यहोवा के प्रति इसराइल की बेवफाई के गवाह के रूप में आकाश और पृथ्वी की इसी तरह की कल्पना का आह्वान करते हैं। जब मैं यह सुंदर प्रभावशाली कविता पढ़ता हूं तो मुझे अपने बेटों के साथ की गई अनेक बातचीत याद आती है, जैसा कि अधिकांश पिता करते हैं जब छोटी उम्र में उन्हें सही बात चुनने में परेशानी होती थी। मैं हमेशा अपनी बातचीत की शुरुआत उसी तरह से करूंगा जैसा मूसा ने पद 2 में कहा है, और मैं इसे थोड़ा बदल कर कहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुन सकते हो और देख सकते हो कि मेरा उद्देश्य तुम्हारे लिए ही अच्छा है, कि मैं जो ज्ञान प्रदान करता हूं वह बारिश की तरह है, और यह या तो स्वागत करने वाली मिट्टी से मिल सकती है जो इसे पी जाती है और अच्छी चीजें पैदा करती है, या पथरीली मिट्टी से मिल सकती है जो नमी को रोकती है और यह खो जाती है और अवांछित हो जाती है। यह गीत आशा की अभिव्यक्ति है। आशा है कि इसराइल मूसा के शब्दों को सुनेगा और अपरिहार्य होने से पहले उन शब्दों पर ध्यान देगा। यह एक आशा है कि इसराइल सुनेगा और वह सब याद रखेगा जो प्रभु ने उनके लिए किया है, और इस प्रकार खुद को उस क्रोध के अधीन नहीं करेगा जो उसका न्याय मांगता है, लेकिन उसकी दया उन पर नहीं लाना चाहती। और पद 3 में मूसा यह स्पष्ट करता है कि यह गीत परमेश्वर के नाम पर है, यह मूसा के नाम पर नहीं है, यह उसका विचार भी नहीं है, यद्यपि बाद में लोग इसे उसके नाम पर एक शीर्षक देंगे। यह गीत मूसा के विचारों को नहीं बल्कि यहोवा की इच्छा को प्रस्तुत करता है। परमेश्वर के नाम का प्रचार करना परमेश्वर के गुर्गों और चरित्र का प्रचार करना है। नाम के लिए इब्रानी शब्द शेम है, और मैं चाहता हूं कि हम अपने समाज में नाम शब्द के वास्तविक अर्थ को पुनः प्राप्त कर सकें। हमारे लिए नाम का कोई अर्थ नहीं है, केवल पहचान के लिए। एक नाम दूसरे नाम जितना ही अच्छा है। आजकल कुछ नाम वास्तविक शब्द नहीं रह गए हैं, वे केवल अक्षरों का समूह हैं जिन्हें बोला जा सकता है। पश्चिमी संस्कृति में नाम का इतना कम मतलब होता है कि जब हम ऋण के लिए आवेदन करते हैं या हमारे घर पर टाइटल चेक चलाया जाता है तो हमारा सामाजिक सुरक्षा नंबर हमारे नाम से ज्यादा इस बात का सबूत होता है कि हम कौन हैं। लेकिन नाम शब्द का असली मतलब पहचान से परे है। इसका मतलब दुनिया को हमारे गुर्गों और एक व्यक्ति के रूप में हम कौन हैं यह बताना है। बचपन की मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक है मेरी नानी का मुझसे कहना, तुम ब्रैडफोर्ड हो, वैसा ही व्यवहार करो। वह एक गर्वित महिला थी जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे परिवार के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने समुदाय में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की थी और वह चाहती थी कि हम व्यक्तिगत रूप से उस प्रतिष्ठा के अनुरूप काम करें। वह चाहती थी कि हम अपने नाम के अनुरूप काम करें। और मूसा कहते हैं कि परमेश्वर के गुण और प्रतिष्ठा यह है कि वह एक चट्टान है, उसके कर्म पूर्णतः परिपूर्ण हैं, और वह जो कुछ भी करता है और जो कुछ भी आदेश देता है वह न्यायपूर्ण है, वह बिना चूके विश्वास योग्य है, वह सत्य है। इब्रानी में चट्टान के लिए शब्द सुर है। मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश लोग तुरंत सोच रहे होंगे कि यीशु के अद्भुत नामों गुणों में से एक हमारी चट्टान है। हाँ, प्रभु हमारी चट्टान है, यह तोरह का सिद्धांत था। इसका आविष्कार नए नियम के समय में नहीं किया गया था। यीशु को हमारी चट्टान कहना हर यहूदी मन में उन्हें परमेश्वर पिता से जोड़ता था, क्योंकि चट्टान उस युग में यहोवा के लिए एक सामान्य विशेषण था।
यीशु को चट्टान के रूप में संदर्भित करना उन्हें देह में प्रभु के रूप में पहचानता था जो हमारे बीच चलते हैं, और निश्चित रूप से यह यहूदी आबादी के बहुमत के साथ अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ। सूर एक दिलचस्प शब्द है, इसका मतलब एक चट्टान नहीं है जिसे हम रास्ते पर चलते समय लात मार सकते हैं। इसका मतलब एक ऐसा पत्थर भी नहीं है जो रास्ते के किनारे परा हो या पहाड़ी से निकला हो, बल्कि इसका अधिक सही अर्थ चट्टान या पहाड़ है। यह एक ऊंचा स्थान है जो धरती में मजबूती से जर जमाए हुए है लेकिन स्वर्ग की ओर बढ़ता है। सुर ठोस अचल है और मैदानों, घाटियों और उनसे बहने वाली पानी की नदियों को राजसी ढंग से देखता है।
परमेश्वर को सुर के नाम से संबोधित करना बाइबल में मनुष्यों को बताए गए ईश्वर के पहले नाम गुण से भी मेल खाता है, एल शद्दाई। जैसा कि पता चलता है, शद्दाई एक अक्कादियन भाषा का समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़। एल शद्दाई का अर्थ है पहाड़ का ईश्वर। ये ईश्वर का नाम है जिसे याकूब ने सबसे पहले जाना था, इसलिए हम ईश्वर के लिए उन दो नामों के बीच घनिष्ठ संबंध देखते हैं। सुर पत्थरदार पहाड़ या चट्टान और शद्दाई पहाड़।
मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पद चार में सूचीबद्ध परमेश्वर के ये गुण वास्तव में क्या हैं। वे दिव्य प्रेम की परिभाषा है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमारे प्रति निर्देशित उनके प्रेम को पूर्णता, न्याय, विश्वास योग्यता और सत्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए चूंकि हम उनके प्रेम की वस्तुएं हैं, चूंकि हम उनकी इस छवि में सृजित विशेष रचनाएं हैं, इसलिए वह हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम आज्ञाकारिता में उन्हीं गुणों को प्रदर्शित करें, पूर्णता, न्याय, विश्वास योग्यता और सत्य। अन्यथा करना परमेश्वर से प्रेम करना नहीं है, यह हमारे अपने तरीकों और इच्छाओं से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना उनके प्रति गर्मजोशी की भावना नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करना हमारे द्वारा अच्छे काम करना नहीं है जिससे हमें अपने बारे में अच्छा महसूस हो। परमेश्वर से प्रेम करना आराधना सेवा के लिए उपस्थित होना और कुछ गीत गाना और प्लेट में कुछ डॉलर रखना नहीं है। जब हम शब्दों को मुंह से बोलते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो हमें यह कल्पना करने की जरूरत है कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर पूर्णता, न्याय, विश्वास योग्यता और सत्य है। ये वे गुण हैं जिन्हें एक साथ लेने पर हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि ये परमेश्वर के आधारभूत गुण हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ये चारों गुण यहोवा की पूर्णता, न्याय, वफादारी और सच्चाई की निर्धारित प्रणालियों पर आधारित हैं। ये उसकी पूर्णता, उसके न्याय, उसकी वफादारी और उसकी सच्चाई है जिसके बारे में बात की जा रही है। हम इसे अपने हिसाब से नहीं बना सकते। हम अपनी आधुनिक परिभाषाओं को शास्त्रीय परिभाषाओं के स्थान पर नहीं रख सकते और न ही समाज के विकसित होने के साथ परिभाषाएं बदल सकती हैं। अगर हम अन्यथा सोचते और व्यवहार करते हैं तो इसे अवज्ञा कहा जाता है, और इसका परिणाम पद पांच में दिया गया है। वहां मूसा कहता है कि परमेश्वर की संतानों ने यहोवा के प्रति इन गुणों का प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए वे उसके योग्य नहीं हैं। दूसरे शब्दों में समस्या परमेश्वर के साथ नहीं है बल्कि इज़राइल के साथ है। यह प्रभु नहीं है जो भ्रष्ट है बल्कि इब्रानियों का राष्ट्र है।
अब कविता का भाव गर्म होने लगता है। सलाह पर ध्यान देने और उससे लाभ उठाने के लिए कोमल पितावत आग्रह के बाद सवाल उठता है, क्या आप ईश्वर को इस तरह से चुकाते हैं जो कुछ वह है और जो कुछ उसने आपके लिए किया है? आखिरकार जैसा कि पद छह में कहा गया है, वह आपका पिता है जिसने आपको बनाया है। यह बताना मुश्किल है कि यह कितना चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। मूसा कहता है कि इज़राइल को मूर्ख और नासमझ होना चाहिए, अन्यथा यह कोई मतलब नहीं रखता कि एक तरफ वे पूरी तरह से जानते और पहचानते हैं कि यहोवा ने उन्हें मानव के रूप में बनाया है और उन्हें अस्तित्व में लाया है अपने अलग लोगों के रूप में जो पूरी दुनिया में अद्वितीय हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे प्रभु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह शब्द के हर अर्थ में उनके पिता निर्माता नहीं है। पद सात से शुरू होकर इज़राइल पर परमेश्वर की आशीषों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।
ये पहले कुछ शब्द इसराइल को अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में कई सौ साल पीछे सोचने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि मिस्र में सिर्फ एक पीढ़ी पीछे सोचने के लिए कह रहे हैं। मूसा कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर संदेह है तो अपने पूर्वजों से पूछो, उनसे पूछिए जिन्होंने वास्तव में अनुभव किया है कि परमेश्वर ने इसराइल को फिरौन से छुड़ाया और उन्हें स्वतंत्रता की ओर ले गया तथा उन्हें माउंट सिनाई की वाचा भेंट की। वास्तव में मूसा कहते हैं, उस अपेक्षाकृत हाल की घटना, निर्गमन की नींव, प्राचीन काल में वापस जाती है जब परम प्रधान ने इसराइल को पृथ्वी पर उनके स्थान, उनकी क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित किए और प्राचीनों, जो कहानीकार, परंपरा के रखवाले और इसराइल के नेता हैं, से दूर के अतीत के मामलों पर परामर्श किया जाना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक के अनुसार यह महान जल प्रलय के बाद था कि प्रभु ने मानव जाति, एक ऐसी जाति जो एक ही आम भाषा बोलती थी, को कई राष्ट्रों में विभाजित किया और उन्हें पृथ्वी के मुख पर बिखेर दिया बाबेल के टॉवर के बाद। यह हमें पद 8 पर ले आता है, जो एक छोटा सा चक्कर लगाने और कुछ मिनटों के लिए रुकने के लिए एक दिलचस्प जगह है। यहां कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर समय के साथ बहस की गई है, उन्हें संशोधित किया गया है और उन्हें उनके मूल अर्थ में फिर से बनाने से कुछ दिलचस्प परिणाम सामने आए हैं। आपके बाइबल संस्करण के आधार पर आपके पास अन्य अनुवादों की तुलना में इस पद के लिए कुछ मौलिक रूप से भिन्न शब्द हो सकते हैं, और भिन्नता का संबंध उस विशेष अनुवाद के स्रोत से है जिस पर आपकी बाइबल आधारित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मसोरेटिक टेक्स्ट, 10वीं शताब्दी ईस्वी के इब्रानी बाइबल पाठ, सेप्टुआर्जेंट, पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक पुराना नियम बाइबल पाठ और डेड सी स्क्रॉल लगभग 100 ईसा पूर्व से, सभी पद 8 और बाद में आने वाला एक और पद को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यहां इस मामले का सार है, अधिकांश संस्करणों सीजेबी सहित में पद 8 में कहा गया है कि परमेश्वर ने मानव जाति को विभाजित किया और उन्हें इसराइल के पुत्रों के अनुसार या इसराइल की जनसंख्या के अनुसार या ऐसा ही कुछ उनके राष्ट्रों की सीमाएं सौंपी। पद का तात्पर्य है कि परमेश्वर ने उतनी ही संख्या में राष्ट्र बनाए, परिभाषा के अनुसार ये गैर यहूदी राष्ट्र हैं जितने इसराइली थे, और चूंकि परंपरा यह थी कि 70 इसराइली याकूब के साथ मिस्र गए थे, इसलिए परमेश्वर द्वारा बनाए गए राष्ट्रों की संख्या 70 है। अब स्पष्ट रूप से उत्पत्ति अध्याय 10 और 11 में मानव आबादी को लोगों के समूहों में विभाजित करके राष्ट्रों का निर्माण करने का विवरण अब्राहम, पहला इब्रानी, के जन्म से सैकड़ों साल पहले हुआ था। तो यह कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने इसराइल के पुत्रों की संख्या का उपयोग इसराइल के अस्तित्व में आने से सैकड़ों साल पहले पृथ्वी के राष्ट्रों को बनाने के लिए किया? यह इसराइलियों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों के निर्माण के बारे में यह अनुवाद है जो हमें मसोरेटिक इब्रानी ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सेप्टुआजेंट और डेड सी स्क्रॉल में हमें अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। इन दोनों अनुवादों में यह कहा गया है, ले मिस्पर बेनेई एलोहिम, जिसका अर्थ है दिव्य प्राणियों की संख्या के बराबर। अतः मृत सागर, स्क्रॉल और सेप्टू आर्जेंट में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने राष्ट्रों का आवंटन किया और मनुष्य की सीमाओं को दैवीय प्राणियों की संख्या के अनुसार निर्धारित किया, न कि इसराइल की जनसंख्या के अनुसार। और जब यहोवा ने उन राष्ट्रों को दिव्य प्राणियों को सौंपा तो उसने इसराइल को भी अपने लिए अलग कर लिया। कुछ रब्बी कहेंगे कि बेहतर अनुवाद ईश्वर के पुत्रों की संख्या के बराबर होगा। अधिकांश यहूदी और ईसाई विद्वान वर्तमान में स्वीकार करते हैं कि कम से कम मसीह के युग के दौरान यह वास्तव में व्यवस्था विवरण 32:8 का पाठ था, जैसा कि तोरह में पाया जाता है। और चूंकि मूल सेप्टुआजेंट उससे 200 साल पहले भी लिखा गया था, इसलिए राष्ट्रों को दिव्य प्राणियों की संख्या के अनुसार विभाजित करने का उल्लेख लगभग निश्चित रूप से मूल शब्द था। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखें तो इस अवधारणा को नकारना मुश्किल है कि बाइबल हमें बताती है
कि दुनिया के हर देश पर शासन करने वाले दूसरे दिव्य प्राणी भी हैं, आध्यात्मिक लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण से। हम यहां किस दिव्य प्राणी की बात कर रहे हैं? स्वर्गदूतों की, अन्य देवता, राक्षस? क्या मामले को जटिल बनाने वाली बात यह है कि इब्रानी शब्द एलोहिम एक वैध बाइबल शीर्षक है जिसका उपयोग इसराइल के ईश्वर को दर्शाने के लिए किया जाता है और इसका वैध अर्थ भी है देवता, छोटे जी देवता, बहुवचन में कई देवता। और हम इस अर्थ को बाइबल में अन्य संदर्भों में भी इस्तेमाल होते हुए पाते हैं। जब हम समझते हैं कि मध्य युग में इस्तेमाल की जाने वाली पसंदीदा इब्रानी बाइबल मसोरेटिक इब्रानी पाठ थी, तो यहूदी धार्मिक नेताओं की चिंता को समझना काफी आसान है कि वे बेनी एलोहिम को दिव्य प्राणी के रूप में व्याख्या करने के प्रलोभन पर थे, जबकि व्यवस्था विवरण 32 का 8 को अन्य देवताओं के रूप में। अन्य देवताओं की संभावना को स्वीकार करने से यहूदी धर्म के भीतर गंभीर धार्मिक समस्याएं पैदा होंगी, खासकर तब जब यह एक आधारभूत शास्त्रीय समझ थी कि यह अन्य देवताओं की पूजा थी जो हमेशा इसराइल को परेशानी में डालती थी और निर्वासन में भेजती थी। फिर भी पवित्र शास्त्र में कई जगहों पर यहोवा ने अन्य देवताओं को झूठे देवता कहने के अलावा उन्हें गैर देवता भी कहा, अस्तित्वहीन। क्या ये गैर देवता और झूठे देवता वही चीजें थीं जो एलोहिम के पुत्र, ईश्वर के पुत्र, जिन्हें दिव्य प्राणी के रूप में भी अनुवादित किया गया था? मुझे उम्मीद है कि आप हम सभी के लिए यहां नतीजों को देखेंगे। ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है, इसलिए हम इस मामले को टाल नहीं सकते जैसा कि लगभग 1000 वर्षों से प्रथागत है। तो सवाल यह है, क्या वास्तव में अन्य दिव्य प्राणी परमेश्वर के पुत्र हैं जिन्हें परमेश्वर ने पृथ्वी पर अन्य राष्ट्रों की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया है सिवाय इसराइल के, जिसे उसने अपने लिए रखा है? और यदि है तो वे क्या हैं? वैसे हम इब्रानी बाइबल में अन्य स्थानों पर भी इसी वाक्यांश बेनी एलोहिम, ईश्वर के पुत्र, का प्रयोग पाते हैं। अय्यूब 1 और 2 में हम ईश्वर के पुत्रों को एक समूह के रूप में देखते हैं जिन्हें समय समय पर प्रभु के सामने उपस्थित होकर यह बताना होता है कि उन्हें पृथ्वी पर क्या करने के लिए नियुक्त किया गया है। अय्यूब में वर्णित उन बेनी एलोहिम, ईश्वर के पुत्रों में से एक को एक नाम भी दिया गया है, शैतान। अय्यूब में यह समझाया गया है कि इस दिव्य प्राणी का काम पृथ्वी पर घूमना, ये देखना है कि लोग किस तरह के बुरे काम कर रहे हैं और फिर यहोवा को इसकी सूचना देना और ईश्वर को उनके खिलाफ किसी तरह की विनाशकारी कार्रवाई करने के लिए राजी करने का प्रयास करना है। शैतान मानवता का आधिकारिक अभियोक्ता था। ओह, लेकिन यह सब नहीं है। हम भजन 29 और 97 में भी यही वाक्यांश पाते हैं। निर्गमन 15 का 11 में हमसे एक अलंकारिक प्रश्न पूछा गया है, हे यहोवा, परमेश्वर के पुत्रों में तेरे समान कौन है? बेनी एलोहिम में। दानियेल की पुस्तक भी इन दिव्य प्राणियों के अस्तित्व को विश्वसनीयता प्रदान करती है जिन्हें परमेश्वर ने विभिन्न राष्ट्रों पर नियुक्त किया था। अपनी बाइबल में दानियेल अध्याय 10 खोलें। दानियेल 10 का 4 से 14 पढ़ें। यहां हम एक राजकुमार के रूप में वर्णित व्यक्ति को देखते हैं। हम जानते हैं कि यह संदर्भ से एक आध्यात्मिक राजकुमार है जो दानियेल के पास आता है, लेकिन एक अन्य आध्यात्मिक राजकुमार जो फारस का प्रभारी था ने उसे पकड़ लिया। दानियेल से बात करने वाला दिव्य प्राणी तभी मुक्त हुआ जब माइकल नामक मुख्य राजकुमार आया और फारस के राजकुमार के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसकी मदद की।
ओह, लेकिन ये और भी आगे जाता है। दानियेल 10 पर वापस जाए।
दानियेल 10 का 19 पढ़ें अंत तक।
ओह लड़का, अब हमारे पास एक और दिव्य प्राणी है जो ग्रीस राष्ट्र का प्रभारी है, जो तब आएगा जब यह अन्य बेनी एलोहिम दानियेल को छोड़ देगा। और दानियेल का दिव्य प्राणी जल्दी से जल्दी जाने वाला है क्योंकि उसे वापस जाना है और फारस के दिव्य प्राणी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखनी है, जो मुझे लगता है उसका वर्तमान कार्य है। इसके अलावा उसे मिलने वाली एकमात्र मदद, वह कहता है, माइकल नामक इस एक प्रमुख बेनी एलोहिम से आएगी। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि अन्य दिव्य प्राणी परमेश्वर के पुत्र भी हैं, जिनमें से कुछ परमेश्वर के विरोध में हैं और कुछ परमेश्वर की टीम में हैं, और परमेश्वर ने इन बेनी एलोहिम को उन सभी राष्ट्रों के साथ जोड़ा है जिन्हें उसने पृथ्वी पर बनाया और स्थापित किया है।
मैं साफ साफ कह दूं, आप इस बात को ज्यादातर समय छिपा हुआ और टाला हुआ देखते हैं, खासकर व्यवस्था विवरण में बेनी एलोहिम के बारे में यह भाग, क्योंकि यहूदी और गैर यहूदी धर्मशास्त्री इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि इसके साथ क्या करना है। इस बात का वास्तविक डर है कि इज़राइल के परमेश्वर के अनुयायियों की भीड़ गलत समझोगी और परमेश्वर के इन पुत्रों को या तो स्वनिर्मित या पूरी तरह से स्वायत्त प्राणियों के रूप में देखेगी या वास्तविक देवताओं के रूप में देखेगी, जिन्हें आमतौर पर शास्त्रों में झूठे देवता के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा इसे चरम सीमा पर ले जाने पर यह इस धारणा को गलत विश्वसनीयता प्रदान कर सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना देवता या देवताओं का समूह होता है। हमने तोरा क्लास में इस बारे में काफी चर्चा की है। मैंने आपको बताया है कि प्राचीन लोगों के बीच यह कैसे माना जाता था कि प्रत्येक राष्ट्र के पास देवताओं का अपना अनूठा समूह होता है और देवता क्षेत्रीय होते हैं, उनकी शक्ति उस राष्ट्र की सीमाओं पर समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए कनान के देवता की शक्ति वहां थी, लेकिन आम तौर पर कहीं और नहीं। यहां हम कुछ आत्मविश्वास के साथ यह समझ सकते हैं, अन्य दिव्य प्राणी भी हैं और उनके पास पृथ्वी के राष्ट्रों पर किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण है। ये स्वयं निर्मित दिव्य प्राणी नहीं है, वे यहोवा द्वारा निर्मित और यहोवा द्वारा नियंत्रित हैं। वे छुटकारे के इतिहास की उसकी योजना में किसी प्रकार का उद्देश्य पूरा करते हैं। शैतान महान विरोधी उन दिव्य प्राणियों में से एक है। उन्हें बेबीलोन की मीनार के परिणाम स्वरूप परमेश्वर द्वारा बनाए गए विभिन्न राष्ट्रों के साथ जोड़ा गया था, और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे आज भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यद्यपि परमेश्वर की इच्छा से वे वास्तव में देवता नहीं हैं, लेकिन कभी कभी संभवतः पूरे इतिहास में उन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता है और गलत तरीके से देवताओं के रूप में पूजा जाता है। मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं, क्योंकि यदि परमेश्वर के ये पुत्र बेनी एलोहिम इन राजकुमारों को दानियेल ने बुलाया था वास्तव में मौजूद हैं और इस गृह के राष्ट्रों को सौंपे गए हैं, विश्वासियों के रूप में हमें इसके बारे में बेहतर पता होना चाहिए। शायद यह हमें इस बात को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा कि हमारी इस दुनिया में क्या चल रहा है जो बेवजह नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, जहां हमारे नेतृत्व में सामान्य ज्ञान गायब हो गया है और दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा ईश्वर और इसराइल के करीब जा रहा है, लेकिन विशाल हिस्सा उससे और उसके लोगों से दूर जा रहा है। मैंने आपको कुछ सप्ताह पहले बताया था कि व्यवस्था विवरण के इन अंतिम कुछ अध्यायों में हम प्रमुख रहस्यों का सामना करेंगे, रहस्य जो सदियों से बाइबल के विद्वानों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं, रहस्य जिनके कारण कई अनुवादकों ने तोरह और परमेश्वर के वचन के अन्य भागों को अनदेखा कर दिया है जहां से ये रहस्य दिखाई देते हैं, और उनके स्थान पर ऐसी चीजें डाल दी हैं जो कभी वहां थी ही नहीं, लेकिन लंबे समय से चली आ रही मानव निर्मित अटकलों और सिद्धांतों के साथ बेहतर ढंग से फिट बैठती है, जो हमें परेशान नहीं करती है। अब जब हम समझ गए हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी के अन्य राष्ट्रों को आत्मिक प्राणियों को अधीन करने का अधिकार दिया है, तो शायद हम इसराइल को अपने लिए बचा कर दिए गए महान विशेषाधिकार को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस निर्णय ने स्वतः ही इसराइल को अलग बना दिया। यह निर्णय इसराइल को अन्य सभी से अलग करता है, और यह सोचना कि कुछ यहूदी विरोधी शास्त्र विरोधी चर्च नेताओं ने बाद में घोषणा की कि परमेश्वर ने अपना निर्णय पलट दिया है और इसराइल को बदलने के उद्देश्य से अन्य जातें चर्च बनाया है, दिमाग को झकझोर देता है। इसलिए जब हम यह शब्द देखते हैं कि इसराइल प्रभु का हिस्सा या अंश था, तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, उसका हिस्सा किसमें था।
यह उन राष्ट्रों का उसका हिस्सा है जिनके बाकी हिस्से को ईश्वरीय लेकिन ईश्वर के अधिकार के अधीन प्राणियों को सौंप दिया गया था। यहां संयोग से हम देखते हैं कि मूसा ने इसराइल को याकूब कहा। याद रखें कि कुलपिता याकूब का नाम ईश्वर ने बदलकर इसराइल रख दिया था और इसलिए याकूब के बेटों इसराइल के बेटों ने अपने पिता इसराइल के नाम पर राष्ट्र का गठन किया। पूरे बाइबल में हम याकूब और इसराइल के नामों को बारी बारी से देखते हैं। पद 10 इसराइल को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने उन्हें जंगल में पाया या अधिक शाब्दिक रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में। यह सिनाई और अरब प्रायद्वीप के बैरोनेस में था जहां इसराइली भटकते थे और यहीं पर उन्हें परमेश्वर के साथ वाचा मिली जिसने उन्हें उनके लोग और परमेश्वर को उनका परमेश्वर बनाया। हालांकि सामान्य अनुवाद की परमेश्वर ने इसराइल को रेगिस्तान में पाया लक्ष्य से चूक जाता है। क्रिया अधिक का अर्थ है प्रदान करना या बनाए रखना। विचार यह है कि यहोवा ने इसराइल को जंगल में सहारा दिया और उनकी सुरक्षा और अस्तित्व सुनिश्चित करते हुए उन पर सावधानी पूर्वक नजर रखी। यह परमेश्वर के इसराइल के पिता होने के पहले के कथनों के अनुरूप है और अगले कई पदों में यहोवा द्वारा अपने लोगों को दी गई प्रेम पूर्ण देखभाल को चित्रित करने के लिए उपयोग किए गए विभिन्न दृष्टांतों और रूपकों के साथ है। पद 10 के अंतिम शब्दों में कहा गया है कि यहोवा ने इसराइल की रक्षा इस प्रकार की मानो वह उसकी आंख की पुतली हो। उसकी आंख की पुतली के बारे में अनुवाद गलत नहीं है, लेकिन अगर इसका शाब्दिक अनुवाद किया जाता तो यह उतनी गहराई नहीं ले पाता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए कुछ करें, अपने बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़ें और उस व्यक्ति की आंख की पुतली में बहुत ध्यान से देखें। अब मुझे बताएं कि आपको क्या दिखाई देता है। आंख के केंद्र में गोल भाग को देखें। यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अपनी एक छोटी सी छवि दिखाई देगी जो आपको वापस प्रतिबिंबित कर रही है, जैसे कि आप एक घुमावदार दर्पण में देख रहे हो। यह पद शाब्दिक रूप से कहती है कि परमेश्वर ने अपनी आंख में छोटे मनुष्य के समान इसराइल की रक्षा की। छोटा मनुष्य उस मनुष्य का प्रतिबिंब है जिसे परमेश्वर देख रहे हैं। ध्यान दें कि उस छोटे मनुष्य जो आप हैं को उसकी आंख में देखने के लिए आपको अपने बगल वाले व्यक्ति के कितने करीब जाना पड़ा। पद 10 के अंत में यह कथन बहुत अंतरंग है। क्या आप कभी बैठे हैं और बस अपने जीवन साथी या अपने छोटे बच्चे या पोते को प्यार से देखते हैं, विशेषकर जब उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, बस उनकी छवि में आनंद लेते हुए और यह सोचते हुए कि बल्कि यह परमेश्वर द्वारा उस छवि की रक्षा करने के बारे में है जो उसकी नजर में है, और वह छवि उसकी नजर का वह छोटा मनुष्य उसके लोग इसराइल है।
पद 11 में एक और ज्वलंत रूपक का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों की किस तरह देखभाल करता है। रूपक एक उकाब का है जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। इसमें उकाब के बच्चों को अपनी पीठ पर लाद कर उन्हें अपने साथ ऊंचे स्थानों पर ले जाने की बात कही गई है। यह बात मुझ पर तब तक असर नहीं करती थी जब तक कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे यह समझने में मदद मिली कि उकाब अपने बच्चों को कैसे प्रशिक्षित करते हैं। मुझे पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ कि व्यवस्था विवरण 32 का 11 में जो वर्णन किया गया है वह वास्तव में काफी शाब्दिक और वास्तविक है। शायद उत्तरी अमेरिकी पक्षी विज्ञान पक्षी अवलोकन के गॉडफादर आर्थर क्लीवलैंड बेंट है। 1900 के दशक की शुरुआत में एसी बेंट ने अपने अवलोकन के बारे में यह लिखा था कि एक उकाब अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा है। मैं आपसे एक पल के लिए शांत होने के लिए कहूंगा। अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लें और बस देखें कि क्या आप वह कल्पना कर सकते हैं जो मैं आपको उद्धृत करने वाला हूं। मां चट्टानों में घोंसले से शुरू हुई और बच्चे को बेरहमी से पकड़कर उसे लगभग 90 फीट नीचे गिरने दिया। फिर वह उसके नीचे झपट्टा मारती, पंख फैलाती और वह उसकी पीठ पर बैठ जाता। वह उसके साथ पर्वत की छोटी तक उड़ती और यह प्रक्रिया दोहराती। एक बार शायद उसने उड़ानों के बीच 15 मिनट तक प्रतीक्षा की। मुझे कहना चाहिए कि उसने उसे सबसे अधिक लगभग 150 फीट नीचे गिरने दिया।
मेरे पिता और मैंने उसे मंत्र मुग्ध होकर 1 घंटे से अधिक समय तक ऐसा करते देखा। वाह, क्या तस्वीर है। प्रभु इज़राइल को ले जाता है और उसे उसी तरह सिखाता है जैसे एक चील अपने बच्चों को खुद उड़ना सिखाती है। लेकिन इज़राइल के लिए सीखने का एकमात्र तरीका उसे ऊंचे स्थानों पर ले जाना और उसे छोड़ना है। शुरू में, चाहे वह आत्मविश्वास की कमी से हो या ईश्वर पर भरोसा न होने से या अभी तक पंखों से उड़ान भरने की पेचीदगियों को न सीख पाने से, इज़राइल सीधे मौत के भंवर में कठोर धरती की ओर गिर जाता। लेकिन अचानक प्रभु नीचे झपट्टा मारते और समय रहते उसे अपनी पीठ पर उठा लेते। प्रभु इज़राइल को वापस शिखर पर ले जाता है केवल प्रक्रिया को दोहराने के लिए। कभी कभी इज़राइल को आराम करने और अपनी सांस लेने का समय दिया जाता था, लेकिन जब प्रभु ने फैसला किया कि यह समय है, तो उड़ान प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ। प्रभु कितना महान धैर्य दिखाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार की आवश्यकता है या कितना समय लगता है। इज़राइल को शायद डर लगे और क्षणिक रूप से वह अकेला और नियंत्रण से बाहर महसूस करे, लेकिन प्रभु हमेशा वहां है उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए, जैसे एक उकाब अपने बच्चों को पकड़ता है। और इस सब का उद्देश्य इज़राइल को प्रभु के मार्ग सिखाना है। इज़राइल को सिखाना है कि एक दिन ऊंचे स्थानों से ऊपर कैसे उठना है। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो। आमीन।